नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया था कि हे पितामह, ये मिथिला के जो राजा हुए हैं, जितने भी राजा हुए हैं, ये जनक कहलाते हैं, इनको जनक की उपाधि दी है और ये सब भोगों में रहते हुए शासन करते हुए भी मोक्ष को प्राप्त हो गए, बड़ा आश्चर्य लगता है महाराज, इसका क्या रहस्य है। पितामह भीष्म कहने लगे कि हम तुमको इस विषय में जनक जी की एक बड़ी विचित्र कथा सुनाते हैं। जनदेव नाम के एक मिथिला के राजा थे, जनदेव। वे हरदम एक बात का विचार करते रहते थे कि शरीर के बाद क्या आत्मा होती है। बहुत से ऋषि मुनियों ने समझाया कि महाराज होती है, पर वो कहते हम कैसे माने कि होती है। उनके यहां सैकड़ों सैकड़ों आचार्य लोग बैठे रहते थे, सबकी बातें सुनते थे और सुन सुन करके वो यही पूछते कि भाई आपको क्या लगता है कि शरीर छूटता है तो आत्मा रहती है क्या, और फिर आत्मा का दोबारा जन्म होता है क्या। आप शास्त्र के प्रमाण से तो बोलेंगे ही, पर शास्त्र की बात से मेरे मन में विशेष संतोष नहीं होता है। शास्त्र ने कह दी मान ली, थोड़ा संतोष कम होता है। तो कहते हैं महाराज, ये तो बात शास्त्र की मानी जाएगी। जैसे हम लोग मिथिला नगरी के बाहर जंगल को नहीं देख सकते हैं यहां बैठे हुए, तो ये तो मानना ही पड़ेगा कि जो जंगल जानने वाले हैं वो कहते हैं कि साहब इतने वृक्ष हैं, इतना बड़ा जंगल है, हमारी आंख नहीं पहुंची तो क्या हुआ, जो गए हुए वो बताएंगे, तो मानना तो पड़ेगा कि नहीं नहीं ये बातें छोड़ो, ये बातें मैं नहीं मानता। मुझे तो यही बताओ कि मरने के बाद ये आत्मा रहती है क्या और आगे पुनर्जन्म होता है क्या। अब ऐसी जिद पकड़ ली राजा ने, तो वहां एक पंच शिख नाम के ऋषि आए, वे कपिला के पुत्र थे, सारी पृथ्वी पर घूमते थे, बड़े ज्ञानी महात्मा थे, एक जगह रहते नहीं थे, तत्व ज्ञान उनको हुआ हुआ था, ऋषियों में उनका बड़ा नाम था, बड़े विद्वान, अनुभवी विद्वान। लोग तो उनको कभी कभी सांख्य शास्त्र के प्रणेता कपिल के रूप में उनको मानते थे कि साक्षात कपिल है। ये आसुरी नाम के ऋषि के शिष्य थे। हजारों ऋषि मुनि एक बार आसुरी के आश्रम में आए थे और कपिल भगवान के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे थे। उनके अंदर ये पंच शिख भी थे और उन ऋषि मुनियों के बीच में उन्होंने बड़ी शास्त्रों की चर्चा की। वहां से चर्चा करने के बाद उनको पता चला कि जनक महाराज आत्मा के विषय में बड़े संशयशील है, कि मरने के बाद आत्मा रहती है क्या, और मरने के बाद ये आत्मा दोबारा जन्म लेती है क्या, दूसरा शरीर धारण करती है क्या। जनक जी के पास पहुंच गए, जनक जी महाराज के पास बैठ करके सत्संग किया, तो जनक जी महाराज ने हजारों आचार्यों को छोड़कर उस कपिल का पीछा किया कि महाराज आपके अंदर कुछ ज्ञान लगता है, कुछ ऐसा लगता है आप मेरी शंकाओं का समाधान कर सकते हो, मैं मोक्ष चाहता हूं। अरे राजन, मोक्ष लेकर क्या करोगे, तुमको इतना विशाल राज्य मिला है, तुमको इतना अच्छा परिवार मिला है, तुमको अनेकानेक भोग सामग्रियां मिली हैं, तुम मोक्ष को लेकर क्या करोगे। तब उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज इनसे मैं संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए मोक्ष की इच्छा है। वो तो पूछ रहे थे परीक्षा के लिए, बड़ा सरल सीधा सा उत्तर दिया, महाराज इसे संतोष नहीं हो रहा है, इतना विशाल भूमंडल का राज्य मेरे पास, धन दौलत खूब मेरे पास, संतोष नहीं होता। अच्छा, इससे बड़ा और राज्य तुमको दिला दें तो संतोष हो जाएगा कि नहीं होगा, त्रिलोकी का राज्य इंद्र पद दे देवे तो कि महाराज संतोष तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इतना बड़ा राज्य देते हैं, अभी तो छोटा सा राज्य है। कि महाराज जितना भी बड़ा राज्य होगा उसका नमूना तो है ही ना, ये कड़ाह के अंदर लाखों चावल हैं, लाखों, वो चावल सिद्ध वेग नहीं तो एक चावल को लेके देख लेते हैं, भाई अभी थोड़ी कणिका है, थोड़ा चावल कठोर है, थोड़ी देर वहां अब चावल सिद्ध हो गए, तो एक एक को थोड़ी देखा जाता है, नमूना। ऐसे ही मुझे ये राज्य मिला है, भोग पदार्थ स्त्री सब मिला है, संतुष्ट नहीं हूं। ऐसा ही तो मिलेगा, आगे मिलेगा वो। पंचशिक बड़े प्रसन्न हो गए, वाह राजन, यहां से मोक्ष की इच्छा का मार्ग चलता है। जो आदमी सुख भोगना भी चाहे और मोक्ष की भी बात करनी चाहे, उसको मोक्ष कैसे मिलेगा। तुमको इस संसार के अंदर सुख नहीं दिख रहा है, बस 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 तुम मोक्षगामी हो। जात निर्वेद मुक्त्वा स कर्म निर्वेद मुक्तवान, कर्म निर्वेद मुक्त्वा च सर्व निर्वेदम अब्रवीत। अब बताने लगे कि राजन इस संसार में जन्म लेते हैं तो मां के पेट में ऊंधा लटका रहता है, बहुत कष्ट होता है, पेट के अंदर इस जीव को इतना कष्ट होता है ऊंधा लटका हुआ, अपने ही मलमूत्र में पड़ा रहता है झिल्ली के अंदर, और माता के पेट के अंदर की गर्मी से वो पकता है, सांस उसका उसी गंदगी में ही लेना पड़ता है, खावे माता और प्रभाव पड़े बच्चे पर, बहुत दुख होता है। इसलिए जन्म से पिंड छुड़ाना चाहिए, आगे जन्म न हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। वाह महाराज, अब जन्म तो हो गया तो आगे न हो इसी में ही सावधान, और आगे कैसे नहीं होगा, अभी तुम अपने कर्म सुधारो, कर्म निर्वेद, पहले तो जात निर्वेद और फिर कर्म निर्वेद, अपने कर्म को सुधारो। कर्म के अंदर सुख लेने की इच्छा होगी तो दुख पाना पड़ेगा, कर्म निर्वेद के बाद फिर सबसे निर्वेद हो जाओ। निर्वेद कहते हैं वैराग्य को, सबसे वैराग्य हो जाओ, परिवार से, कुटुंब से, धन से, राज्य से, सबसे वैराग्य हो जाओ। कि महाराज ये तो मैं चाहता हूं कि सब कुछ छोड़कर किसी महात्मा के, देखो ऐसा नहीं होता है, इसको नहीं बोलते हैं, इसको वैराग्य नहीं बोलते हैं, इनके बीच में रहो, और वैराग्यवान रहो, उपराम होकर के रहो, यही तो साधना है। इनको छोड़ करके यदि तुम हमारे समान ऋषि मुनि बनोगे तो ये साधना नहीं है, इसका नाम साधना नहीं है, तपस्या नहीं है। इसके बीच में रहो और इसमें मोहित मत हो। नास्तिकों का संग मत करो। नास्तिक लोग तो यही कहते हैं कि भाई खाओ पियो और मौज उड़ाओ, क्या किसने देखा है आगे का लोग, ऐसा नहीं है। दृश्यमाने विनाशे च प्रत्यक्षे लोक साक्षी के आगमात परमस्तीति ब्रुवन नपि पराजित है। ये दिखाई देने वाला जगत विनाश की तरफ प्राप्त हो रहा है, पर इस विनाश को जानने वाला कौन है? जो जानने वाला है वो आत्मा कहलाता है। कहते हैं महाराज वो शरीर के साथ नष्ट नहीं होता क्या? वो इसलिए नष्ट नहीं होता है कि वो नष्ट होने का उसमें धर्म ही नहीं है। अनात्मो अनात्मा यहात्मनो मृत्यु क्लेशो मृत्युर जरा मरय जरामय है। ये जो शरीर का जब अभाव होता है तो आत्मा का अभाव होगा, ये बात बिल्कुल संभव नहीं है। अच्छा बताओ राजन, समुद्र के अंदर झाग उठते हैं, लहरें उठती है, लहरों के समाप्त होने पर समुद्र समाप्त होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि लहर उसी में ही उठती है, उसी में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही आत्मा है, वो परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा में ही रहता है, और इस आत्मा परमात्मा के अंदर ही शरीर कुटुंब आदि सब उसके अंदर लहर के समान पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। इसलिए शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। बचपन के नाश से आत्मा भी नष्ट हो गई थी क्या? नहीं हुई। तुम जो ये बार बार संदेह करते हो कि भाई मरने के बाद आत्मा है कि नहीं, और मरने के बाद आत्मा को लोक परलोक मिलता है क्या, हम शास्त्र को तो नहीं मानते। आप ये देखो कि आपके जीवन में, आपके भाइयों में, आपके परिवार में जो आपके खास लोग हैं उनके जीवन में परिवर्तन होता है। तुम तो राजा हो, तुम्हारे और भाई राजा हैं क्या? और भाई तो राजा नहीं है। क्यों नहीं है? एक पिता के पुत्र हो तो तुम्हारी आयु बराबर नहीं, तुम्हारी योग्यता बराबर नहीं, क्या कारण है ये तो हम नहीं जानते। बस यही है कि आत्मा आपकी अपने कर्मों के अनुसार है, आपके भाइयों की अपने कर्मों के अनुसार है। तुम कहते हो कि हमको प्रत्यक्ष ही दिखाओ, आंखों से दिखाओ, तो आंखों के द्वारा देखने की बात को ही यदि सत्य मानोगे तो भाई फिर तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जिनको आप आंख से तो नहीं देखते हो लेकिन भीतर से मानते हो। ऐसे उनको बताया, लकड़ी में आग रहती है, पत्थर में आग रहती है। कहते पत्थर में आग कहां रहती महाराज? की पत्थर को पत्थर से जोर से घिसो आग पैदा होगी कि नहीं? यहां पैदा होगी। बच्चे थे तो पत्थर को लेके जोर से पत्थर को रगड़ देते, एक चिंगारी से पैदा आनंद आता, ये देखो आग पैदा, ये देखो आग पैदा हो। तो पत्थर में आग है तभी तो पैदा होती है, यूं आग देखो है ही नहीं। केवल प्रत्यक्ष दिखना ये कोई ज्ञान नहीं होता है। इसलिए आत्मा है इस बात के विषय में आप बुद्धि से विचार करो, केवल इंद्रियों के द्वारा विचार मत करो, बल्कि ये सोचो कि ये इंद्रियां किसके अंदर काम करती हैं। ये इंद्रियां जिसके प्रकाश में काम करती है ना, वो आत्मा है। तुम कहते हो आंख से दिखना चाहिए, तो आंख किसके प्रकाश में देखती है बताओ? आंख को देखने की शक्ति कौन देता है? कान को सुनने की शक्ति कौन देता है? शब्द स्पर्शंच रूपंच रसो गंधश्च मूर्तय एते या मरणात् पंच षड्गुणा ज्ञान सिद्धये। शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सब पदार्थ है ना, इनको लेने वाली इंद्रियां जिसकी शक्ति से काम करती है उसका नाम अब कुछ भी रख दो, आत्मा रख दो। शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। यदि आत्मा का नाश हो जाता तो फिर तुम्हारे अंदर ये मोक्ष की इच्छा ही क्यों होती है? तुम्हारे अंदर ये जो मोक्ष इच्छा है ना कि मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं, राज्य मिल गया तभी तृप्त नहीं हूं, भोग पदार्थ खूब मिल गए मैं तृप्त नहीं हूं, ये अतृप्ति बताती है। आप तृप्त नहीं हो रहे हैं ये अतृप्ति बताती है कि आत्मा नाम की चीज है। वो तृप्त होने वाला कौन है? शरीर तो नहीं होगा, शरीर तो जड़ है ना। तृप्ति और अतृप्ति का अनुभव तो कोई चेतन करेगा। सुषुप्ति काल के सुख का अनुभव कौन करता है? इन सब बातों को उसने सुना और सुनकर के वो उनके चरणों में गिर गया। कहने महाराज, मकड़ी अपने ही लार से अपने ही पैरों से यूं जाल बनाती है और खुद ही फंस जाती है, ऐसे ही मैं मेरे ही अज्ञान के जाल में फंस गया महाराज। जैसे रुरु नाम का मृग होता है वो अपने पुराने सींग को छोड़ देता है, उसमें फिर नए सींग आ जाते हैं। सांप जैसे कैंचुली को छोड़ देता है और फिर उधर देखता ही नहीं है, ऐसे ही महाराज हमको इस शरीर से मन आदि से सबसे ऐसे उपराम होना चाहिए। अब हमको ये बात समझ में आई है। पंचशिक नाम के ऋषि बड़े खुश हो गए और चले गए और यो आत्म तत्व में स्थित हो गए। ध्यान से सुनिएगा। और उनको लगा कि नहीं, मेरा आनंद मेरी चाहना मेरे से ही पूरी होने वाली और किसी से पूरी नहीं होगी। ऐसे आनंद में डूबे हुए थे उसी समय भगवान ब्राह्मण बनकर के आए। उन्होंने देखा कि जनक जी की परीक्षा लो, वहां आए तो अब वो ब्राह्मण बन करके आए, वो ऊटपटांग काम करने लग गए। ऊटपटांग काम किया तो लोगों ने आकर शिकायत की कि महाराज जाने कौन एक मूर्ख ब्राह्मण आया है जो ऊटपटांग बातें बोलता है, ऊटपटांग आचरण करता है, अब उसको दंड तो दे नहीं सकते हैं लेकिन प्रजा के अंदर ये उसके आचरण ही अच्छे, चाहे जाए पैर पसार के बैठ जाता है यज्ञ वगैरह का, मुंह बिचकाता है, क्या है यज्ञ कुछ नहीं, ऐसा करके मुंह बिगाड़ करके लोगों को उल्टे मार्ग में चलाता है। तो कहा बुलाओ भाई, ऐसे ब्राह्मण देवता कौन है, बुलाओ। तो वो बड़े अच्छे अच्छे फटे कट्टे ब्राह्मण थे, वो लेके आए, ये है हमारा। जनक जी ने कहा ब्राह्मण देवता ये क्या करते हो आप, क्यों हमने क्या किया? ये तो तुम ये यज्ञ को नहीं मानते, उसको नहीं मानते। हाँ नहीं मानते, हमारी मान्यता है नहीं मानते। तो कहा महाराज दंड तो आपको दूंगा नहीं और आप यहां से चले जाओ, हम आपको देश निकाला देते हैं, जहां तक मेरे राज्य की भूमि मम राज्याद विनिर्गच्छ है वहां तक चले जाओ। देख जनक, तू मुझे निकालता तो है लेकिन मैं बहुत बड़ा सिद्ध हूं, देख लेना मेरे यहां से जाने के बाद मैं एक फुंकार करूंगा तेरा सारा राज्य जल जाएगा। कोई बात नहीं, जल जाएगा जल जाएगा। वो चले गए और जाते जाते ऐसे करते करते ब्राह्मण देवता गए महाराज के पास, सूचना महाराज अपना नगर उधर से जल रहा है जल रहा है जल रहा है, महाराज हाय त्राई मच गई, हाय त्राई मच गई, कोई बात नहीं, शांत बैठे कि महाराज किले के चारों तरफ आग लग गई है, सब जल रहे हैं, शांत। हमारे तक तो आग पहुंचती नहीं मंत्रियों, हमारे तक आग पहुंचती नहीं है। महाराज कमरे के अंदर आग आ गया, आने हमारे तक आग नहीं पहुंचती, शांत होकर बैठ गए। ब्राह्मण देवता तो साक्षात भगवान ही थे ना। अब वो प्रजा को बोलते हैं अनंतम बतमे वित्तम, अरे मंत्रियों मेरे पास आत्मज्ञान रूपी अनंत धन है, ऐसा धन है जो कभी खूटता ही नहीं है। भाव्यम में नास्ति किंचन, और मुझे धन की जरूरत ही नहीं है। मिथिलायाम प्रदीप्तायाम नमे किंचन दह्यते, मिथिला जल रही है मेरा क्या जलता है। ऐसी बात सब सोच करके लोगों ने देखा कि भाई ये हमारे महाराज तो बड़े ज्ञानी होंगे। थोड़ी देर में वही ब्राह्मण वहां से अदृश्य हो गए और कृपा की फूंक लगाई, ऐसा किया, सब जैसे थे वैसे ही हो गए। प्रजा में बड़ा आनंद छा गया। तो देखो पितामह भीष्म कहते हैं, देखो यह एक ऐसी बात है कि जिसको ज्ञान हो जाता है उसकी अनुभूति में जब ज्ञान नहीं होता तब तक वो ज्ञान कोई काम का नहीं है। जनक जी महाराज की अनुभूति के अंदर ज्ञान था, इसलिए तुमने पूछा ना कि कैसे भोगों के रहते हुए भी उनसे अलग रहते थे, ऐसे इस कारण से रहते थे। हरदम ज्ञान में स्थित होकर के उनको ये थोड़ी था कि मैं कोई भोगों को भोगने वाला हूं, वो आत्मा की दृष्टि से अपने को बिल्कुल उपराम मानते थे। युधिष्ठिर कहने लगे महाराज बड़ी शंकाओं का समाधान होता है। महाराज कोई आपको ऐसा भी आदमी दिखाई दिया क्या जो गृहस्थ में रहा हो, बड़े नियम संयम के साथ रहा हो, अतीत सर्व संसार है, सारे संसार से निरपेक्ष रहा हो, सर्व द्वंद्व विवर्जित है, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से उपराम हो गया हो, ऐसा दुर्लभ पुरुष कभी आपके ध्यान में आया क्या पितामह कि भाई देखो एक बात हमने सुनी है। देवल नाम के एक ऋषि थे, उनके एक कन्या थी सुवरचला, बड़ी सुवरचला बड़ी अच्छी शुभ लक्षणा कन्या थी, बड़ी विदुषी थी और मन से भी सुंदर, तन से भी सुंदर, भाव से भी सुंदर, बड़ी सुंदर कन्या थी। पिता को रात दिन चिंता रहती थी कि मैं संसार में मेरे पुत्री के लिए कोई ऐसा पति हो कि ब्राह्मण हो, श्रोत्रिय हो और ज्यादा कुटुंब न हो, प्रियवादी हो, महातपा हो, ऐसा होना चाहिए। एक दिन की बात है, सुवरचला ने कहा अपने पिताजी से, पिताजी आजकल आप उदास बहुत रहते हो, क्या कारण है? मेरे कारण से उदास हो क्या? तो मैं आपको एक बात कहती हूं, मेरा एक ऐसा पति होना चाहिए जो अंधा हो और उसको सब कुछ दिखता हो, अंधा भी हो और दिखता भी हो। पिता ने कहा न शक्यम प्रार्थितम वत्स्य, ऐसा कैसे हो सकता है सब कुछ भी दिखता और अंधा भी हो। कहने साहब फिर मैं विवाह नहीं करूंगी, फिर आप प्रयत्न मत करना, चिंतित मत होना। अब वो बेचारे ऋषि बड़ी चिंता में पड़ गए। उस ऋषि के पास बहुत अच्छे अच्छे शिष्य पढ़ने के लिए आते थे। एक दिन उन्होंने अपने सब शिष्यों को बुलाकर कहा कि बेटा जाओ, तुम तो नाना देश से आए हो, कई ब्राह्मणों को जानते हो, तो जाओ घूम घूम करके और सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दो कि अंधा भी हो और दिखता भी, सब कुछ देखने वाला भी हो और खूब वेद पारंगत ब्राह्मण हो, ऐसा ब्राह्मण आए, हमारी लड़की का विवाह करना है। तो जिन जिन ने भी सुना कि अरे देवल ऋषि की कन्या है, तब तो हम भी जाएंगे, हमारा विवाह हो जाएगा, तो हमारा गृहस्थ है वो धन्य हो जाएगा, क्योंकि उसकी महिमा बहुत सुन रखी थी। खूब ऋषियों का समुदाय इकट्ठा हो गया, ब्रह्मचारी लोग सब आए, तो वहां पर सुवर्चला भी बैठी हुई थी। तो उनका आगे पिताजी ने कहा, बेटा ये देखो कितने अच्छे अच्छे ऋषि मुनि आए हैं, अब इनमें जिनको भी तुम श्रेष्ठ समझो हम उसके साथ ही विवाह कर देंगे। इनमें से अंधा कौन है और सब कुछ देखने वाला कौन है? पिताजी, उसी के साथ विवाह करूंगी। तो सब नाराज हो गए, उठ के चले गए, हमारा अपमान कर दिया, ऐसी पहेलियां की बातें करती हो तो हम ऐसा विवाह होने नहीं देंगे। हम नाराज हो गए, उठ उठ के चले गए। तब जो है सब चले गए तो ये बात सब जगह फैल गई। तब एक श्वेत केतु नाम का ब्राह्मण का लड़का था, उसने सोचा कि ये लड़की जो बात बोलती है ये मामूली बात नहीं है, अंधा भी हो और सब देखने वाला भी हो। तब वो लड़का आया और लड़का आकर के और देवल जी के पास आकर के कहने लगा, हे ऋषिवर, मैंने सुना है आपकी लड़की का विवाह करने के लिए बहुत से ऋषि मुनि आए, लेकिन उन्होंने आपकी बेटी के प्रश्न के उत्तर में नाराजगी व्यक्त की और सब चले गए, हमको बड़ा दुख हुआ। मैं एक ऐसा हूं कि जो अंधा भी हूं और सब कुछ देखने वाला भी हूं, मेरे साथ विवाह कर दीजिए। देखने लगे, तुम अंधे भी हो? यहां अंधा हूं और सब कुछ देखते हो? सब कुछ देखता हूं। बोलो, मैं तो समझा नहीं कि पहले उस लड़की से पूछो कि तुम्हारे प्रश्न का आशय क्या है। ये प्रश्न का आशय हमारी लड़की नहीं बताएगी, तुम काहे के विद्वान हुए? तुम बताओ, अंधे कैसे हो और सब कुछ देखने वाले कैसे हो? उसने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, नाराज मत होइएगा। ये नेदाम वीक्षते नित्यम दृणोति स्पृशते थवा, जिस परमात्मा के कारण से संपूर्ण इंद्रियां अपना अपना व्यापार करती हैं, उस परमात्म शक्ति को मैं देखता हूं, उसका अनुभव करता हूं, इसलिए सब कुछ देखता हूं कि सब कुछ के अंदर वो परमात्मा ही है, परमात्मा से भिन्न कोई नहीं है। और इस संसार से मैं अंधा बना हुआ हूं, मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है। यस्मिन प्रवर्तते चेदम पश्यन शिन्वन स्पृशन अपि तन्मे नास्ति अतः अंध है। ये सब कुछ दिखने वाला, मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं, इसलिए तो मैं अंधा हूं, और परमात्मा ही परमात्मा, इसलिए मैं सब कुछ देखता हूं। ऋषि ने कहा, हे सुवर चले, सुना इसका? कहा, महाराज मुझे मेरा उत्तर मिल गया, पति मिल गया। ऋषि ने सब ऋषि मुनियों को बुलाकर सबके बीच में उसका विवाह कर दिया। सुवर्चला ने कहा कि देखिए, आपने ये तो प्रश्न किया, मैं जीवन भर आपसे प्रश्न करते रहूंगी, मेरे प्रश्नों से आप उकताना नहीं। पितामह भीष्म कहते हैं, ऐसे ऐसे आत्मा के विषय में प्रश्न किए, श्वेत केतु ने ऐसा उनको जवाब दिया, जवाब देते 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 वो खुद ऐसी मुग्ध हो गई, अरे इतना बड़ा ज्ञान, मैं सोचती थी कि मेरे पास ही ज्ञान है। ये देखो महाराज जी बोलते थे ना कैसेटों के अंदर, मैं नहीं तू नहीं यह नहीं वह नहीं, सब बातें इसमें आई है। अहम त्वम इति एतद् ते परे संकल्पनामया, यह तू मैं वह इस सब से परे है वो परम तत्व। तो कि उसके लिए मैं क्यों बोला जाता है? मैं तो भाव से बोला जाता है, मैं पदार्थ नहीं है वो, क्योंकि उसके लिए कोई शब्द का प्रयोग नहीं होता। अहम शब्दो यहम भाव है, जैसे घड़ा है, घड़ा तो बोल दिया लेकिन भाव क्या है? इसमें मिट्टी है, ये है डेस्क है, डेस्क बोल तो दिया, पर इसमें लकड़ी है, ये लकड़ी। भाव दृष्टि से हम लकड़ी बोलेंगे और वाणी से हम बोलेंगे कि ये डेस्क के साथ डेस्क लगाओ, ये डेस्क लगाओ, ये तो लकड़ी है। भाव में ये लकड़ी है, भाई लकड़ी तो बड़ी अच्छी है भाई, ऐसे देखेंगे। ऐसे ही संसार में जितने ये नाम रखे गए वस्तु के नाम, ये नाम तो है घड़े के समान, और इसमें जो परमात्म ज्ञान है वो है परमात्म ज्ञान है वो है परमात्मा के समान, मिट्टी के समान। सुवसला ने कहा कि या महाराज बहुत अच्छी बात है, ऐसे ऐसे प्रश्न आपने हमको बताए, हम कृतार्थ हो गए, मुझे मेरा पति मिल गया। और कहने लगे कि असल में आप पति रूप से मेरे लिए साक्षात भगवान हैं। इस प्रकार से इनके सत्संग की बातें वहां होती रहती थी। आज की कथा को अब यहीं विराम देते हैं।
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण श्रीमन्नारायण नारायण।